हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उस औरत के वहां पर आते ही वो सारे लोग एकदम ही रुक गए और चुड़ैलों की रानी की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गए। और उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, महामाया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें नहीं लगता आपके यहाँ पर किसी ने भी बुलाया होगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं किसी के भी बुलाने से कहीं पर आता हूँ? आगे बढ़ते हुए चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ उस औरत ने कहा। उसकी आँखें एकदम चमकते हुए नीले रंग की थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि उन चुड़ैलों की रानी की थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था और वो देखने में उन चुड़ैलों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो उन सब से अलग थी। हाँ, लेकिन हम सब के बीच जो समझौता हुआ था उसे हिसाब से चुड़ैलों के काम में कोई भी और शक्ति दखल नहीं देगी और सब अपने अपने काम से ही काम रखेंगे, तो फिर आप यहाँ पर आकर मेरी शादी कैसे रोक सकती हैं? श्वेत लाना ने आगे आते हुए उसे औरत से पूछा। और उसे औरत के वहाँ पर आने पर कहीं ना कहीं समर को ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसकी सुन ली। वही चंद्रिका और वीरेश ने राहत की सांस ली कि भले ही शादी रुकी नहीं, कम से कम कुछ देर के लिए टल गई। और इस बीच वीरेश खुद को आज़ाद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें समझाने के बारे में याद मत दिलाओ, वो समझौता हमारे सामने ही बना था और हमने भी उसके लिए हमी भरी थी, तभी वो अंतिम परिणाम आए थे, नहीं तो आज भी सारी शक्तियां आपस में ही लड़ रही होती। उसे औरत ने चेहरे पर एकदम गंभीर भाव के साथ श्वेतलाना की तरफ देखते हुए कहा, बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें ये शादी नहीं करनी। समर ने तुरंत ही उसे औरत के सामने गिड़गिड़ाकर रोते हुए कहा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उसे बचा सकती है और इस शादी को रोक सकती है। और कहीं ना कहीं सफर को वो चुड़ैलों की रानी से ज्यादा ताकतवर भी लग रही है। इसके अलावा वह है कौन इस बारे में तो उसे कुछ भी पता नहीं है। और हम तुम्हें भला क्यों बचाएं? हम तो सिर्फ चेतावनी देने आए हैं। अगर फिर भी इन चुड़ैलों ने अपने मन का किया तो इन्हें परिणाम भुगतने होंगे। हमारे लिए तो अच्छा ही है। ऊपर से नीचे तक समर को देखते हुए उसे औरत ने ये बात कही और ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट। आगे समर को उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो जिस तरह से वहां पर आई थी एकदम उसी तरह अचानक से ही गायब हो गए। लेकिन उसकी बात सुनकर श्वेत लाना और बाकी सारी चुड़ैल एकदम परेशान हो गए। उन सभी के चेहरे पर एक अलग से भाव नजर आने लगे। और तभी उसे खास सेविका चुड़ैल ने आगे जाकर श्वेत लाना से कहा, रानी सा, अब हम क्या करेंगे? क्या हमें महामाया के खिलाफ जाना चाहिए? हम किसी के भी खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ वो कर रहे हैं जिससे हमारी शक्तियां बढ़े और हमें फायदा हो। आप अगर इससे किसी को तकलीफ है तो हम हर किसी के बारे में तो नहीं सोच सकते ना? तुरंत ही अपनी सेविका की बात का जवाब देते हुए श्वेत लाना ने कहा। और फिर इतना बोलकर उसने समर की तरफ देखा और उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट आ गई जो कि अभी कुछ देर पहले तक थी। उसे शायद उसे औरत की बातों से इतना फर्क नहीं पड़ा जिससे कि समर और बाकी चंद्रिका वीरेश को उम्मीदें जगी थी। लेकिन वीरेश ने अब तक अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने हाथ को खोल लिया है और वह एकदम सही समय का इंतजार कर रहा है। चंद्रिका को इस बारे में नहीं पता है। चलो शादी की तैयारी शुरू करो, मैं आज और अभी इसी मुहूर्त में शादी करके रहूंगी। श्वेत लाना का समर पर दिल आ गया है और वह किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता, फिर इसके लिए चाहे बाद में उसे जो भी कीमत चुकानी पड़े। उसने समर की तरफ एक नज़र देखा, उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। वो एकदम डरा घबराया हुआ था, उसके चेहरे पर सूखे हुए खून के निशान थे, उसके बाल एकदम बिगड़े हुए थे और उसके कपड़ों पर भी उसी तरह खून और भूल मिट्टी के दाग थे। वो दिखने में बहुत ही गंदा सा लग रहा था। श्वेत लाना ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम कहीं से भी मेरे दूल्हे तो नहीं लग रहे और बिल्कुल भी वैसे नहीं लग रहे जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी। इतना बोलते हुए उसने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, उसके हाथ से एक चमक निकाली और उसने उसे पूरे हाथ को समर के चेहरे की तरफ से करते हुए उसके नीचे शरीर की तरफ की और देखते ही देखते समर के कपड़े और उसका पूरा हुलिया एकदम बदल गया। वह अब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नौजवान लग रहा था। उसके कपड़े भी एकदम राजकुमारों वाले आ गए थे। ऐसे कपड़े तो वो राजमहल में भी नहीं पहना। उससे भी ज्यादा सुंदर कपड़े इस वक्त उसके शरीर पर थे और साथ ही चेहरे से वो सारे दाग भी एकदम गायब हो गए थे। अपने कपड़े और हाथ पर देखते हुए पहले तो समर को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर वो समझ गया, उसे चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों से ये सब कुछ किया है। और चुड़ैल उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर वहां से आगे बढ़ी और आज अभी भी चल रही थी, लेकिन कुछ काम हो गई थी तो उसने उस सेविका को इशारा किया जो कि वहां पर मंत्र पढ़ रही थी। उसने तुरंत ही आग में कुछ भस्म जैसा अजीब सा डाला, उससे वह आग की लपट ऊंची हो गई और श्वेत लाना सफर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ आगे ले गई। और अब समर ने सारी उम्मीद छोड़ दी है, वह नहीं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और ना ही उसे कुछ बोल रहा है। वह आगे बढ़ी और उसने सब कुछ फिर से शुरू किया। आज जितनी भी राब मेरी बजे वो पहले कर चुकी थी, वो सब कुछ भंग हो गया था, इसलिए उसे फिर से वो करना है, ऐसा उसकी सेविका ने बताया। और वो मुस्कुराती हुई वहां पर बैठी है, उसने समर का हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। समर एकदम बेबस लाचार सा मुंह लटकाकर उसके बगल में बैठा हुआ है। और तभी वीरेश वहां से उठकर खड़ा हुआ और उसने एकदम तेज आवाज में चिल्लाया, रुक जाओ, छोड़ दो राजकुमार को। नहीं, फिर से नहीं। इतना बोलते हुए श्वेत लाना ने गुस्से में वीरस की तरफ अपना हाथ उठाया और अपनी शक्तियों से फिर से उसे बांधने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी वीरेश और उसके बीच में एक बड़ी सी अदृश्य दीवार बन गई जिससे कि श्वेत लाना की शक्तियां उसे तक पहुंच ही नहीं पाई और ना ही उसे पर कोई भी असर हुआ। वीरेश खुद भी हैरान रह गया क्योंकि उसने खुद अब तक अपने बचाव में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तुम्हें क्या लगता है, चुड़ैलों की रानी तुम ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर एक आवाज गूंजी और वह आवाज ऐसी है जिसे सिर्फ वीरेश पहचानता है, और वह आवाज सुनकर वीरेश के चेहरे पर मुस्कुराहट और तसल्ली भरा भाव आ गया। उसने तुरंत ही उसी तरफ देखा तो वहां पर उसके आश्रम के दोस्त खड़े हुए थे। वो 10-12 लोग थे, उनके पीछे ही काफी सारे सैनिक भी थे, और उन सब के वहां पर आने की इस वक्त जुड़ैलों को तो उम्मीद नहीं थी क्योंकि उनका ठिकाना एक ऐसी जगह पर है जहां पर कोई भी आम आदमी इतनी आसानी से तो नहीं पहुंच सकता। लेकिन श्वेत लाना को ये नहीं पता कि आश्रम के सारे शिष्य कोई भी आम इंसान नहीं होते। वो सब लोग आगे आए और एक लाइन बनाकर एक साथ वीरस के दोनों तरफ खड़े हो गए। वीरेश बीच में था और उसके दोनों तरफ बाकी सारे लोग। आह, तुम इंसानों की आदत कभी नहीं जाएगी हमारे काम के बीच में टांग लगाने की, श्वेत लाना गुस्से में दांत पीसते हुए बोली। तो उसकी बात का जवाब देते हुए वीरेश के बगल में खड़ी शिवानी ने कहा, शुरुआत तुमने की है, क्यों तुम एक इंसान से शादी करने जा रही हो? अगर पहले तुम ही नियम तोड़ोगी तो तुम्हें उसके परिणाम तो भुगतने ही होंगे, तुम इससे बच नहीं सकती। लेकिन अभी भी अगर तुम बचाना चाहती हो तो छोड़ दो राजकुमार को और चली जाओ यहाँ से, फिर से दोबारा किसी इंसान पर नजर मत डालना। कहानी जारी है।
कौन थी महामाया और कैसे पहुंचे वीरेश के साथी सारे यहां तक, और क्या चुड़ैल सच में इतनी आसानी से हार गई, और क्या करने वाली है अब चुड़ैलों की रानी? क्या चंद्रिका और वीरेश समय रहते पहुंच पाएंगे वसुंधरा तक? क्या इसमें वीरेश अपने दोस्तों की मदद लेगा?